एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो हम सबके पास है, पर जिसके बारे में हम शायद ही कभी रुककर सोचते हैं।
हाँ, हमारे दांत।
बिल्कुल, हमारे दांत।
और ये सिर्फ मतलब खाना चबाने के लिए तो है ही नहीं। आज हम पीटर एस उंगर की किताब है टीथ, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसके जरिए देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी सी चीजें हैं ये दांत, पृथ्वी पर जीवन के लाखों सालों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए हैं।
हाँ, ये विकास की कहानी बताते हैं, हमारे खान पान की, यहाँ तक कि हमारी पूरी जीवन शैली की कहानी।
और आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहाँ हम सब कुछ जल्दी जानना चाहते हैं, ये किताब एक बहुत ही अलग नजरिया देते हैं ना।
बिल्कुल। सोचिए, हमारे शरीर का एक हिस्सा जिसे हम रोज शायद आईने में देखते हैं, वो इतना बड़ा एक तरह से खजाना है।
तो चलिए आज दांतों के इस अनकही कहानी की परतों को खोलते हैं।
हाँ, जरूर।
शुरुआत करते हैं लेखक से, पीटर एस उंगर। ये कोई साधारण अकादमिक नहीं है जैसा मैंने समझा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वे अरकानसस विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान के प्रोफेसर हैं और दुनिया भर में दांतों के अध्ययन, जिसे हम दंत मानव विज्ञान कहते हैं, और पुराने समय के पर्यावरण मतलब पूरा पारिस्थितिकी, उसके बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं।
अच्छा, और उनकी खासियत क्या है, मतलब किस तरह का काम करते हैं वो?
हाँ, उनकी खासियत यह है कि वे सिर्फ पुरानी हड्डियों या जीवाश्मों को ही नहीं देखते। उन्होंने डेंटल माइक्रोवेव टेक्सचर एनालिसिस नाम की एक कमाल की तकनीक विकसित करने में मदद की है।
डेंटल माइक्रोवेयर, ये क्या होता है?
इससे वो दांतों की सतह पर पड़े उन बहुत ही छोटे छोटे निशानों को पढ़ सकते हैं, मतलब जो खाना चबाने से बनते हैं।
अच्छा।
और ये निशान बता देते हैं कि कोई जानवर या इंसान अतीत में क्या खाता था।
मतलब वो दांतों के फहे अतीत का मेन्यू पढ़ सकते हैं। कितना दिलचस्प है ये तो।
हाँ, बिल्कुल। और उनका काम सिर्फ मानव विज्ञान तक ही सीमित नहीं है, वो जीवाश्म विज्ञान, जीव विज्ञान और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग और पदार्थ विज्ञान यानी मटेरियल साइंस को भी साथ लाते हैं।
ये अंतर विषय दृष्टिकोण हुआ।
सही बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो मुश्किल वैज्ञानिक चीजों को भी बड़े सरल और दिलचस्प तरीके से समझाते हैं।
हाँ, इसीलिए ये किताब सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं, बल्कि हम जैसे आम लोगों के लिए भी है, जो अपने शरीर और इस दुनिया के बारे में कुछ नया जानना चाहते हैं।
बिल्कुल।
तो ये किताब असल में है किस बारे में, अगर सीधे शब्दों में पूछूं तो?
सीधे शब्दों में कहें तो ये किताब हमारे दांतों को देखने का नजरिया बदल देती है। उंगर हमें बताते हैं कि दांत वो प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है।
सिर्फ चबाने के औजार नहीं,
नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये विकास की कहानी कहने वाले अद्भुत रिकॉर्डर हैं एक तरह से।
तो किताब का मूल सवाल यही है कि दांत पृथ्वी पर जीवन की कहानी कैसे सुनाते हैं।
हाँ, यही उंगर का तर्क है कि अगर हम दांतों की बनावट देखें, उनकी सतह पर पड़े घिसाव के निशान देखें और अलग अलग प्रजातियों में उनके विकास को समझें, तो हम जान सकते हैं कि वो जीव क्या खाते थे, कैसे माहौल में रहते थे और उनका विकास कैसे हुआ।
बिल्कुल, क्योंकि खाना ढूंढना और उसे पचाने लायक बनाना, ये तो हर जीव के लिए एक बुनियादी चुनौती है।
हाँ, बिल्कुल। और दांत इस चुनौती का प्रकृति का एक बहुत ही सफल और विविध समाधान है।
तो किताब हमें सबसे पहले क्या समझाती है, दांत हैं क्या असल में? क्या ये सिर्फ हड्डी का टुकड़ा है?
नहीं, यहीं से कहानी रोमांचक होती है। उंगर बताते हैं कि दांत हड्डी से कहीं ज्यादा जटिल हैं। इनमें सबसे बाहरी परत होती है इनैमल।
इनैमल, हाँ।
और पता है क्या, यह हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है।
सबसे कठोर?
कितना कठोर?
इतना कठोर कि इसकी तुलना स्टील से की जा सकती है। क्या बात है, हमारे मुंह में स्टील से भी मजबूत चीज।
हाँ, सोचिए जरा।
कमाल है। इसका मतलब है कि ये लाखों सालों तक सुरक्षित रह सकते हैं। तभी शायद जीवाश्म रिकॉर्ड में दांत अक्सर सबसे अच्छी हालत में मिलते हैं।
बिल्कुल। ये इनेमल, उसके नीचे डेंटिन और बाकी हिस्से मिलकर एक मजबूत टिकाऊ संरचना बनाते हैं।
और ये स्थिर नहीं है, है ना? ये बढ़ते हैं, बदलते हैं।
हाँ, विकसित होते हैं और इस प्रक्रिया में जानकारी दर्ज करते जाते हैं। लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? किताब हमें दांतों के विकास की कहानी पर ले जाती है।
हाँ, ये हिस्सा तो मुझे और भी हैरतअंगेज लगा। आपने बताया कि दांतों का विकास शायद मछलियों की त्वचा से हुआ।
हाँ, बिल्कुल। उंगर बताते हैं कि दांतों का विकास शायद आज से करोड़ों साल पहले शुरुआती मछलियों की त्वचा पर मौजूद छोटे नुकीले शल्कों मतलब स्केल्स से हुआ होगा।
वो कांटे जैसे?
हाँ, वो शल्क जो उन्हें शिकारियों से बचाते थे, वो धीरे धीरे मुंह के अंदर विकसित होकर शुरुआती दांत बन गए।
वाह, मतलब बचाव के लिए बनी चीज खाने के काम आने लगी।
बिल्कुल,
ये तो विकास का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे कोई चीज समय के साथ बिल्कुल नया काम करने लगती है।
सही कहा। और फिर लाखों सालों में ये दांत और जटिल होते गए, अलग अलग जीवों में उनके खाने के हिसाब से अलग अलग तरह के दांत विकसित हुए।
जैसे मांसाहारी जानवर, मान लीजिए भारत में बाघ या तेंदुआ,
जी उनके दांत नुकीले होते हैं मांस फाड़ने के लिए।
बिल्कुल।
वहीं गाय या हिरण जैसे शाकाहारी जानवरों के दांत चौड़े और चपटे होते हैं घास और पत्तियां पीसने के लिए।
इसे ही रूप कार्य का अनुसरण करता है कहते हैं।
बिल्कुल।
जैसा काम वैसा रूप।
एकदम सही, फॉर्म फॉलोज फंक्शन। और ये विविधता तो बस शुरुआत है। उंगर हमें दांतों की दुनिया की अद्भुत विविधता दिखाते हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है कि एक ही मूल संरचना कितने अलग अलग रूप ले सकती है।
हाँ, जरा सोचिए, चूहों के दांत जो लगातार बढ़ते रहते हैं ताकि घिसने पर भी छोटे ना हो।
हाँ।
या फिर वेल मछली की बालीन जो तकनीकी रूप से दांत नहीं पर उसी जरूरत से विकसित हुई है पानी से छोटा खाना छानने के लिए।
बिल्कुल। सांपों के जहरीले दांत जो शिकार में जहर पहुंचाने के लिए खास बने हैं।
और हाथी के विशाल दांत, वो तो सिर्फ खाने के लिए नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। हाथी दांत लड़ाई, खुदाई और यहाँ तक कि अपना रुतबा दिखाने के भी काम आते हैं। यह हमें अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है। दांत सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि औजार और हथियार भी हैं।
हाँ, ऊदबिलाओं गवीबर्स वो अपने दांतों से पेड़ काटकर बांध बना लेते हैं।
सोचिए।
और कुछ दांतों साथी को आकर्षित करने के लिए भी विकसित हुए हैं, जैसे नर हिरन या बारासिंगा के निकले हुए दांत।
हाँ, वो यौन चयन का उदाहरण हो सकता है।
तो दांतों की भूमिका बहुत व्यापक है। खाना, बचाव, औजार, प्रदर्शन, सामाजिक व्यवहार, बहुत कुछ।
ये विविधता दिखाती है कि कैसे एक ही पूर्वज से निकली प्रजातियां अलग अलग माहौल और जरूरतों के हिसाब से ढल जाती हैं। इसे वैज्ञानिक अनुकूली विकरण कहते हैं। जी, अडेप्टिव रेडिएशन। जैसे एक ही परिवार के लोग अलग अलग शहरों में जाकर बिल्कुल अलग जिंदगी जीने लगे, वैसे ही प्रजातियां अलग अलग खाने और माहौल के लिए अलग अलग दांत विकसित कर लेती हैं।
अब आता है वो हिस्सा जहां उंगर की महारत चमकती है, दांतों से अतीत को पढ़ना। ये किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है। उन्होंने जिस डेंटल माइक्रोवेयर तकनीक पर काम किया है वो कैसे काम करती है?
हाँ, ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होता है। सोचिए, अगर आप कुछ कठोर चीज खाती हैं जैसे मेवे या बीज, तो आपके दांतों पर बहुत महीन खरोचें या गड्ढे बन सकते हैं। अगर आप नरम पत्ते खाती हैं तो निशान अलग तरह के होंगे।
अच्छा।
माइक्रोस्कोप के नीचे इन निशानों के पैटर्न को देखकर वैज्ञानिक बता सकते हैं कि कोई लाखों साल पहले मरा हुआ जानवर क्या खाता था।
ये तो कमाल है। मतलब दांत की सतह एक तरह का रिकॉर्ड बन जाती है, जैसे किसी पुरानी विनाइल रिकॉर्ड की ग्रूव्स में संगीत छुपा हो, वैसे ही दांतों के माइक्रोवेयर में डाइट की कहानी छुपी है। इसने तो जीवाश्म विज्ञान में क्रांति ला दी होगी।
बिल्कुल। इससे हमें अपने पूर्वजों जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में पता चला कि वे शायद सिर्फ फल नहीं बल्कि कठोर चीजें भी खाते थे। इसने मानव विकास की हमारी समझ को बदला है।
और सिर्फ माइक्रोवेयर ही नहीं, एक और तकनीक का जिक्र था, स्थिर आइसोटोप विश्लेषण।
हाँ, स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस।
आइसोटोप ये क्या होता है आसान शब्दों में?
आसान शब्दों में कहें तो हमारे खाने और पानी में अलग अलग तरह के रासायनिक तत्व होते हैं जिनके हल्के और भारी रूप होते हैं आइसोटोप।
ठीक है।
ये हमारे दांतों के इनामल में जमा हो जाते हैं जब दांत बन रहे होते हैं। इन आइसोटोप्स का अनुपात, उसको एनालाइज करके वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि जानवर किस तरह के पौधे खाता था, जैसे घास या पेड़ के पत्ते।
अच्छा।
या वो किस तरह के भौगोलिक क्षेत्र में रहता था, या उसने प्रवास किया था या नहीं।
अविश्वसनीय। तो दांत सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या खाया बल्कि ये भी कि कहाँ खाया और शायद कब खाया। ये वाकई में प्रकृति के टाइम कैप्सूल हैं।
हाँ, जैविक अभिलेखागार, बायोलॉजिकल आर्काइव्स, जो लाखों साल की जानकारी सहेज कर रखते हैं।
सही कहा। और ये हमें सीधे उस बिंदु पर लाते हैं जो हम इंसानों के लिए आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, हमारे अपने दांत और आधुनिक दुनिया की चुनौतियां।
जी बिल्कुल।
हाँ, किताब का आखिरी हिस्सा इसी पर केंद्रित है। उंगर समझाते हैं कि हमारे दांत लाखों सालों में हमारे पूर्वजों के खानपान और जीवन शैली के हिसाब से विकसित हुए हैं।
हाँ, जो ज्यादातर रेशेदार, कठोर और अनप्रोसेस्ड भोजन था।
लेकिन आज हमारा खानपान कितना बदल गया है। प्रोसेस्ड फूड, चीनी से भरी चीजें, नरम खाना, ये सब हमारे दांतों के लिए एक बिल्कुल नई चुनौती है। हमारे दांत इस तरह के भोजन के लिए तैयार ही नहीं हुए थे। इसे उंगर विकासवादी बेमेल कहते हैं।
हाँ, इवोल्यूशनरी मिसमैच, बिल्कुल यही शब्द है।
और यही बेमेल आज की कई दांतों की समस्याओं का जड़ है ना, जैसे कैविटीज, मसूड़ों की बीमारियां।
बिल्कुल, भारत ने भी देखें तो परंपरागत आहार की जगह जैसे जैसे फास्ट फूड और मीठी चीजें ले रही हैं, दांतों की समस्याएं बढ़ रही हैं। ये सीधे तौर पर हमारे विकासवादी इतिहास और हमारी आधुनिक जीवन शैली के बीच का टकराव है।
तो इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या निकलते हैं, अगर हम सार निकालें तो?
पहला तो यही कि दांतों की दुनिया में रूप काम के हिसाब से ढलता है। फॉर्म फॉलोज फंक्शन, दांतों की बनावट सीधे उनके काम से जुड़ी है।
दूसरा, दांत जैविक अभिलेखागार है।
ये टाइम मशीन की तरह है जो हमें अतीत में झांकने का मौका देते हैं। वे हमारे खान पान, पर्यावरण, यहाँ तक कि स्वास्थ्य और प्रवास की कहानी भी बताते हैं।
हाँ, उंगर का एक कोट भी है, दांत टाइम मशीन है। ये बात वाकई दिमाग में बैठ जाती है।
बिल्कुल।
तीसरा,
तीसरा विकासवादी हथियारों की दौड़ का विचार, मतलब जैसे पौधों ने खुद को बचाने के लिए कांटे या रसायन विकसित किए, तो उन्हें खाने वाले जानवरों के दांत और मजबूत या अलग तरह के हो गए। ये एक लगातार चलने वाली होड़ है।
अच्छा, चौथा और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, विकासवादी बेमेल। हमारी आधुनिक जीवन शैली हमारे लाखों साल पुराने जैविक डिजाइन से मेल नहीं खाती, खासकर दांतों के मामले में।
जी हाँ, ये हमें अपनी खाने की आदतों पर सोचने को मजबूर करता है।
और पांचवा,
पांचवा, इन सबको समझने के लिए अलग अलग विषयों को साथ लाने की जरूरत। जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग, सब मिलकर ही दांतों की पूरी कहानी बता पाते हैं। ज्ञान वाकई जुड़ा हुआ है।
किताब में कुछ और भी गहरी बातें थीं, जैसे उंगर कहते हैं, विकास दांतों को डिजाइन नहीं करता, ये उन्हें डीबग करता है। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब यह है कि विकास कोई सोच समझकर परफेक्ट चीज नहीं बनाता, वो बस जो पहले से मौजूद है उसमें छोटे छोटे सुधार करता है, या जो काम नहीं कर रहा उसे हटाता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोड में बग्स ठीक करता है। ये एक क्रमिक परीक्षण और त्रुटि वाली प्रक्रिया है, धीरे धीरे होने वाला सुधार।
दिलचस्प। एक और विचार था, एक दांत प्रतिस्पर्धी मांगों के बीच एक समझौता है।
हाँ, मतलब दांत को मजबूत भी होना है, संवेदनशील भी, काटने लायक भी और पीसने लायक भी। कोई एक दांत हर काम में बेस्ट नहीं हो सकता, तो विकास एक संतुलन ढूंढता है, एक कॉम्प्रोमाइज करता है।
ठीक है, और ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी, हम जो खाते हैं वो हमें आकार देता है और हमारे दांत उस कहानी को बताते हैं।
हाँ, ये कितनी सीधी और सच्ची बात है। हमारे दांत हमारी पहचान का, हमारी जीवन शैली का हिस्सा है।
अंत में, दांत झूठ नहीं बोलते, इसका मतलब क्या?
मतलब जीवाश्म या बाकी सबूतों में व्याख्या की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन दांतों पर दर्ज निशान और रसायन वो सीधी सच्ची कहानी बताते हैं। उनमें हेरफेर मुश्किल है।
अच्छा, तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या करें हम इस जानकारी का?
देखिए, सबसे पहले तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य, ये समझ कर कि हमारे दांत किस तरह के भोजन के लिए बने हैं, हम बेहतर खान पान चुन सकते हैं।
हाँ, शायद हमें सोचना चाहिए कि भारत में पारंपरिक रेशेदार आहार और आधुनिक नरम मीठे आहार का हमारे दांतों पर क्या असर पड़ रहा है।
बिल्कुल। दूसरा, शिक्षा में ये कमाल का उदाहरण है। विकास, अनुकूलन, प्राकृतिक चयन जैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को दांतों के उदाहरण से कितना आसानी से समझाया जा सकता है।
हाँ, स्कूलों में इसे शामिल करने से विज्ञान ज्यादा रोचक बन सकता है।
तीसरा, पुरातत्व और फोरेंसिक विज्ञान में, भारत में पुरानी सभ्यताओं के राज खोलने हों या किसी अपराध की गुत्थी सुलझानी हो, दांतों का विश्लेषण अहम सुराग दे सकता है।
पहचान बताने, उम्र का अंदाजा लगाने में।
जी, और जीवन शैली के बारे में जानने में मदद करते हैं।
और चौथा, वन्य जीव संरक्षण में भी इसका उपयोग है।
हाँ बिल्कुल, जानवरों के दांतों का अध्ययन करके हम समझ सकते हैं कि वे क्या खाते हैं, उन्हें कैसे पर्यावरण की जरूरत है और जलवायु परिवर्तन का उन पर क्या असर हो रहा है। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी जैव विविधता है, ये बाघ, गैंडे जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने में मददगार हो सकता है।
तो कुल मिलाकर ये किताब हमें दांतों को सिर्फ एक शारीरिक अंग के तौर पर नहीं, बल्कि विकास, इतिहास और जीव विज्ञान की एक खिड़की के रूप में देखना सिखाती है।
एकदम सही कहा।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा से सबसे हैरान करने वाली बात यही थी कि इनेमल स्टील से भी ज्यादा मजबूत है और दांत वाकई टाइम कैप्सूल की तरह काम करते हैं। ये सोचना ही अद्भुत है कि हमारे मुंह में लाखों साल का इतिहास बंद है।
हाँ, ये है तो कमाल की बात, और मेरे लिए विकासवादी बेमेल का विचार सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। ये समझना कि कैसे हमारी आधुनिक आदतें हमारे गहरे अतीत से टकरा रही हैं, ये सिर्फ दांतों के लिए नहीं बल्कि शायद हमारी सेहत के कई और पहलुओं के लिए भी सच है।
हाँ, ये हमें अपनी पूरी जीवन शैली पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है।
बिल्कुल।
तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगली बार जब आप आईने में अपने दांत देखें तो जरा सोचिए वे आपके खानपान, आपकी सेहत और आपके उन पूर्वजों के बारे में क्या कहानी कह रहे हैं जो लाखों साल पहले इस धरती पर चलते थे।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व सिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कतरा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।